Hare Krishna. This lecture was given in Dwarka Temple on Sunday Love Feast program, What is the Real Wealth of Life, on 20th December 2015 by myself, Prashant Mukund Das.
धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौर चंदा धन मोरा नित्यानंदा प्राण मोरा युगल किशोरा अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल अद्वैत आचार्य बल गदाधर नर हरे विलास मोरा नर हरे विलास मोरा वैष्णव पद धूलिता हे मोर स्नान के लिए वैष्णव पद धूलिता हे मोर स्नान के लिए तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम तर्पण नाम विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादन विचार करिया मध्यस्थे श्री भागवत पुराण मध्यस्थे श्री भागवत पुराण वैष्णवे उचिष्टता हे मोरा मन निष्ठा वैष्णवे उचिष्टता वैष्णवेरा नामेत उल्लासा वृंदावने चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन कहे दीना नरोत्तम दासा कहे मोर हाँ धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंदा धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरा चंदा प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो आप लोग उत्साहित हैं, कल गीता जयंती है, भगवत गीता का जन्म उत्सव है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ऐसे ही कल गीता जयंती है तो हमें उत्साहित होना चाहिए और उस उत्साह के उपलक्ष में आज उत्सव मनाया जा रहा है और कल भी उत्सव होगा और गीता के श्लोकों को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कौन बताएंगे? टॉपिक लिखा नहीं है इसीलिए क्विज है, वरना क्विज नहीं होता। टॉपिक क्या है बताएं, जीवन का असली धन क्या है? तो सब लोग आज धन कमाना चाहते हैं या फिर धन बढ़ाना चाहते हैं और इतना कमाना चाहते हैं कि उनकी सात पीढ़ियां जो है ना बैठ के आराम से खाएं, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, वरना दाल रोटी के लिए टेंशन क्या है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, रुक्मणी द्वार का दीश के मंदिर में आओ, फ्री में प्रसाद पाओ, घर जाओ, सो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन हम लगे हैं किस लिए? उन चीजों की उपलब्धि में जो चीजें हमारे को क्या करती है, टेंशन देती हैं। टीवी होना चाहिए तो कौन सा, LCD, HD, ऐसी चीजों की तलाश में ओवर टाइम कर रहे हैं ताकि धन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। तो क्या इसी के लिए हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके? लोग चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि आज अगर पूछा जाए तो सबसे पावरफुल विटामिन कौन सा है, विच इज द मोस्ट पावरफुल विटामिन प्रेजेंट टुडे, आज के युग में सबसे ताकतवर विटामिन कौन सा है? महामंत्र नहीं है, वो तो है भक्तों के लिए, भौतिक जगत के लोगों के लिए विटामिन एम मतलब मनी विटामिन, हरी बोल, आपके लिए भी है हरी बोल, विटामिन एम मनी 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 वेयर इज माय हनी, बस यही लगे हैं, पैसा 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 कैसे भी करके जैसा तैसा मेरा पैसा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई भागवत में वर्णन है, श्रीमद भागवतम वर्णन करता है कि धन असली क्या है। हम बोलते हैं अगर बात करें तो 100% चीजों में से सिर्फ 5% चीजें ऐसी हैं, 5% जो कि जीवन यापन करने के लिए अत्यधिक जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप में से कितने लोग उन 5 जरूरी चीजों का वर्णन कर सकते हैं, क्या है 5 जरूरी चीजें? तो लोग बोलते हैं रोटी खाना चाहिए और कपड़ा और, अरे तो फिल्म देखी हुई आपने इसलिए बोल, रोटी कपड़ा मकान, उसके आगे क्या बताओ? आगे मकान के बाद हाँ हवा पानी, अच्छा और बेसिक जरूरत है हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य हेल्थ मेडिकल और एजुकेशन, तो मतलब अगर शिक्षा हो, हमारे पास दवाइयां हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान, ये 5 चीजें हो तो हमारा जीवन आराम से गुजर सकता है। लेकिन हम उन चीजों को चाहते हैं जो इन 5 के अलावा हैं, 95% थिंग्स विच आर नॉट अमंग दीज 5 बेसिक नेसेसिटीज, इन 5 मूल जरूरतों को छोड़कर हमारे जीवन की आवश्यकताओं के लिए हम जीवन जी रहे हैं। कार चाहिए तो कौन सी, होंडा सिटी, मर्सिडीज, ऑडी, और चाहिए किसके लिए? उसके लिए जो आपको पसंद नहीं करता, उस पड़ोसी के लिए जिसको आप दिखाना चाहते हैं, तेरे पास क्या है? मेरे पास होंडा सिटी है। उसको दिखाने के लिए हम बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, जबकि बैंक में उतना पैसा नहीं है तो क्या करते हैं, लोन, चाहे उधारी पे जियो लेकिन मजे का जीवन जियो, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, बस ले रहे हैं। तो भागवतम वर्णन करते ये एक्चुअली धन नहीं है, वो पड़ोसी आपसे जलता है, उसको जलाने के लिए आपने अपने खून को जलाना शुरू कर दिया, ज्यादा मेहनत शुरू कर दी है। कम काम करो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं 8 घंटे नौकरी करो, उसके बाद का जो समय है उसको भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में लगाओ, भगवान के बुक वितरण, किताबें पुस्तक वितरण में लगाओ। लेकिन लोग ओवर टाइम करते हैं, जॉब की तलाश में, इवन मंदिर में भी आते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी हमारी नौकरी नहीं कहीं लगवा दीजिए, जॉब की तलाश में मंदिर क्या है। तो भागवतम वर्णन कर रही है, यहाँ पर आपके सामने हम श्लोक पढ़ रहे हैं 11वें स्कंद का 19वें अध्याय में आता है, धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञो अहम भागवतम दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। तो यहाँ पर धन के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, उद्धव जी को भगवान कृष्ण स्वयं यहां पर बोल रहे हैं, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को स्वयं संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, धर्म इष्टम धनम नृणाम, नर का जो धन है वो क्या है, धर्म, धर्म जो है वो धन है व्यक्ति का, और यज्ञो अहम भागवतम, और यज्ञ कौन सा है, जिसमें मैं हूं, दक्षिणा ज्ञान संदेश, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है भक्ति में कार्यों के लिए, ये है व्यक्ति का असली ज्ञान, और प्राणायाम परम बलम, और अपने शरीर के लिए प्राणायाम करना ये सबसे शक्तिशाली वस्तु है। तो यहां पर हम 3 चीजों के बारे में आज के प्रवचन को लेके चलेंगे इस भागवतम के श्लोक से, पहला प्रथम धन धर्म, दूसरा यज्ञ, और तीसरा गुरु। तो अब हम यहां पर प्रथम चीज धर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं, धर्म क्या है, कुछ लोग बोलते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म है, लेकिन धर्म वो है जो भागवत वर्णन करती है। भगवान कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान ने बनाया, घर में बैठकर धर्म नहीं बनता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लॉ किसने बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई, हम घर में नहीं बना सकते कि जी मैं ना मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाने की इच्छा नहीं होती, मेरे बाल खराब हो जाते हैं, तो ये नियम है कि बिना हेलमेट के हम चला सकते हैं, तो ये नियम घर में नहीं बनता। आप जाएंगे तो आपका चालान कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। ऐसे ही धर्म जो है वो भगवान बनाने वाले हैं, हम धर्म नहीं बनाते हैं। लाइनें लग जाती हैं, शिव जी पर जल चढ़ा रहे ठंडा ठंडा, लाइन लगी हुई है, बहुत सारी पब्लिक, क्या हुआ जल चढ़ा रहे, किसी से पूछो क्यों चढ़ा रहे, पता नहीं आगे वाला चढ़ा रहा है इसलिए मालूम नहीं है। तो धर्म वो है जो भगवान बनाते हैं। और धातु, धर्म का जो ध शब्द है इसका मतलब है धातु। धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी आत्मा का नेचर, स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो कभी हम सेवा करते हैं बॉस की, परिवार की, और कभी हमें जब समय मिलता है तो फिर हम सेवा करते हैं कुत्ते बिल्ली की, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है उसके लिए इस्कॉन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह, यहां पर आकर आप भगवान की सेवा में आराम से संलग्न हो सकते हैं। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो कि खरीदनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली है। शास्त्र वर्णन करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध कबु नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। श्रवण करने मात्र से आपकी जो सुप्त अवस्था भक्ति की है वो जागृत हो जाएगी। कुछ एडिशनल नहीं करना है कि 500 रुपए खरीदने हैं तब मुझे भक्ति मिलेगी। भक्ति है, आप सब भक्त हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति का उदय होने के लिए श्रवण, जितना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतना भक्ति में उदय होगा। तो हर संडे के कार्यक्रम में आइए, ध्यान पूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, भक्ति में प्रक्रियाओं में लगना, मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना करना, जप करना, भागवत सुनना, बुक वितरण करना, मतलब पुस्तक वितरण करना, ये सारी चीजें हमारे हृदय को निर्मल करती हैं, ये भक्ति का रास्ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को वैष्णव बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि सर्टिफाइड आई एम वैष्णव, यहां पर एक नेम प्लेट लगा लो वैष्णव.com, प्योर वैष्णव.com, प्योर devotee.com, नो। ये जैसे खाना खाते हैं और पेट भर जाता है ना, बस अब और नहीं, तो वैसे ही पता चलेगा कि हाँ मैं भक्त बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं, मेरा भौतिक आसक्ति समाप्त हुई है या नहीं हुई है, उससे पता चलेगा व्यक्ति कितना भक्ति में प्रगति कर रहा है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि दो चीजें हैं जो हमें संसार में भक्ति करने नहीं देती हैं। पहला है लालच, कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागिनी छड़िया ऐ तो वैष्णव। जो व्यक्ति ये चार चीजें छोड़ सकता है, पहला कंचन पैसे की आसक्ति, दूसरा कामनी स्त्री की आसक्ति, प्रतिष्ठा सम्मान, और भागिनी भाग्य, इसके पीछे फॉर्च्यून, इन चीजों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, जो इनको छोड़ देगा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वही असली वैष्णव है। और दूसरा लस्ट काम हमें भक्ति नहीं करने देता, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर का भजन हमने गाया, धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौर चंद्रा। जो नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु हैं ये है एक्चुअली व्यक्ति का धन। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इसी युग में, इस युग को जो है एक कलयुग, इसी के अंदर 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कहां मायापुर में, जहां अभी यात्रा जा रही है फरवरी और मार्च में, तो वहां हमें जाने का मौका मिलता है, हमें देखने का मौका मिलता है, भक्तों को ढूंढने का मौका मिलता है, तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही असली धन है। आज का प्रश्न क्या था, जीवन का असली धन क्या है, तो आपको उत्तर मिल गया, कृष्ण है। तो प्रभु जी प्रवचन समाप्त हो गया, अब जाएं प्रसाद लें। अरे पाएंगे कैसे उसको, कोई चीज खरीदनी, गाड़ी पता कर लिया कितने की है 4 लाख रुपए की, खरीदे कैसे, जोड़े कैसे, ये है नियम। ये करने के लिए अब हम आगे आपको इसका वर्णन करेंगे कि जो पेपर मनी है, कागज या प्लास्टिक मनी, इन्हीं चीजों के पीछे हम घूम रहे हैं। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जीवन का असली धन क्या है, तो उन्होंने वर्णन किया, जिसके हृदय में राधा कृष्ण है उसके पास धन है, जिसके पास राधा कृष्ण हृदय में नहीं है वो व्यक्ति कैसा है, निर्धन है, निर्धन। और निर्धन जो व्यक्ति है जिसके हृदय में राधा कृष्ण नहीं है, पता नहीं कब निधन हो जाएगा, मर जाएगा व्यक्ति, निर्धन से निधन हो जाएगा, धनवान नहीं रहेगा, धनहीन हो जाएगा। और अभी तो बड़े धन के चक्कर में घूम रहे हैं, मंदिर आया ना करिए प्रभु जी, संडे को आश्रम में आया करिए, प्रोग्राम में आया करिए, प्रभु जी ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, बोलेंगे काम के सिलसिले में दिन भर गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए, प्रभु जी नहीं रहे, अभी खत्म समाप्त, पूरा टाइम मेहनत करते रहे, और एटलास्ट क्या हुआ, राधा कृष्ण का जीवन में हम लेके नहीं आ पाए, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हरि हरि विफल जन्म गवाइनु राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जान पूछ कर हमने विष खाया, इस्कॉन में आए, अच्छे अच्छे भक्तों से मिले, जैसे इसके समोगला प्रभु जी से मिले, और उन्होंने बोला भक्ति करो भजन करो, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं भक्त, हाँ हर संडे आ रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं, और हम हाँ ठीक है कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो जीना बरसो, अभी क्या जल्दी जल्दी करने, बहुत लाइफ पड़ी है अभी तो, नहीं न जाने कब ये प्राण उड़ने वाले हैं, है ना। इसलिए जीव जागो जल्दी से, हमें अभी भक्ति को पकड़ना है। भौतिक धन के लिए कितना प्रयास करते हैं, अगर आपको बोला जाए आप हर संडे को आइए सभी लोग भगवत गीता वितरण करिए, सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आएंगे, मंदिर में जगह नहीं बैठेगी वहां तक पूरा, पड़ोसी को बोल देंगे 1 लाख फ्री में मिलते हैं वहां पे, इस कॉन में से लेक्चर सुनो 1 लाख रुपए, है कि नहीं, सच बात है झूठ है, सच है, सब आएंगे। इतना प्रयास करेंगे रात दिन, एरोप्लेन की टिकट बुक करा लेते हैं 15,000 का टिकट, उसके लिए 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं, फ्लाइट मिस ना हो जाए, 15,000 का लॉस, फ्लाइट मिस ना हो जाए, और यहाँ रोज गोलोक धाम की फ्लाइट जा रही है 4:30 बजे, कितने लोग फ्लाइट पकड़ पाते हैं। जपा कितना सुंदर प्रोसेस बताया, लाखों नाम लेने वाले हरिदास ठाकुर 192 राउंड 1 लाख माला का नाम लेते हैं, वो है एक्चुअली लखपति, जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है वो है लखपति, और कोई व्यक्ति लखपति नहीं है। हमारे आचार्य गोस्वामी उनके बारे में वर्णन करते हैं, कहते हैं त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति शेषा मदा तुच्छवतः, जितने भी गोस्वामी थे उन्होंने मंडलपति प्रधानमंत्री से, जैसे प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और सोने की नाव भरकर इतना सोना दान दे दिया, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति तभी हो सकती है जब धन की आसक्ति समाप्त होती है, ऐसा है, भक्ति तभी देने की धन समाप्त होता है तब, कल ही जाए पता चला बैंक में अपने गड्डी देना जरा 1 लाख की आग लगा दी, बोले प्रभु जी आपने कहा था भक्ति तो आई नहीं, नहीं नहीं, धन की आसक्ति अटैचमेंट टूवर्ड्स द मनी, वो आसक्ति समाप्त करनी, जो है वो है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेटीरियल गेन्स एंड लॉसेस, जो भी प्राप्ति है या हानि है ये आपकी मेहनत से नहीं आएगी, अगर मेहनत से धन आता तो कुत्ता लक्ष्मीपति होता, गली के इस मोड़ से उस मोड़ तक दौड़ते रहता है। रिक्शे वाला सारा दिन मेहनत करता है तो 100 रुपए कमाता है, इसका मतलब मेटीरियल गेन भौतिक प्राप्ति और हानि हमारे हाथ में नहीं है, वो तो किसके हाथ में है, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान के हाथ में है। तो हम अपने जीवन का इस्तेमाल किस में करें, हमें अपने जीवन का इस्तेमाल करना चाहिए बोलने के लिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
धन ऐसा लेना चाहिए जो मृत्यु के साथ समाप्त ना हो, LIC बोलती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद, लेकिन बाद में कोई नहीं देता, प्रीमियम के पैसे लेने के लिए ना चक्कर काटने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट दो, डेथ सर्टिफिकेट, आपके पिताजी नहीं रहे माताजी नहीं रही आपको देते नहीं, लेकिन भक्ति एक ऐसा धन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, बाद में भी जाएगा, और बाद में जब जाएगा और आप यहां से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में, तो आपसे पूछा जाएगा अपनी करेंसी दिखाइए, अमेरिका जाएंगे तो कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर्स, जापान जाएंगे येन, प्रभु जी हो क्या है जापान येन, और जब गोलोक धाम जाएंगे वहां कौन सी करेंसी चलेगी, हरि नाम की करेंसी, भक्ति की करेंसी, जितनी भक्ति होगी उतना वहां पर आपको पानी पीने को मिलेगा, खाना खाने को मिलेगा, यहाँ पे सोच लो हरि नाम नहीं लिया, मंगला आरती नहीं करी, भक्ति नहीं करी, वहां पहुंच गए आत्मा तो छूटेगी, एक दिन शरीर निकलेगा छूटेगा, और हम निकल के जा रहे हैं आत्मा रूप में अपने गोलोक धाम में पहुंच गए, और बड़ी प्यास लगी है, आ रहे हैं चलते हुए रेत के ऊपर से, खंटर मारते हुए यमदूत ला रहे हैं, अरे एक बिस्लेरी बोतल देना, बिस्लेरी बोतल, कह रहे हरि नाम की करेंसी दो, हरि नाम, हरि नाम बोलते तो थे हमने किया नहीं, तो बोले फिर वापस जाओ, अमेरिका जाएं तो हमें एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे अगर डॉलर नहीं है, आप रुपए लेके जाएं चाहे कितने, मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूं, बोले डॉलर दो, बोले एक्सचेंज तो नहीं कराया मैंने, तो बस फिर वापस जाओ, पहले एक्सचेंज कराओ फिर आओ, तो आज एक्सचेंज करने का मौका है, अपना दान अपना पैसा मंदिर में दान दे दो और भगवान से हरि नाम ले लो, एक्सचेंज करा लो सारा दान दे दो, ये डब्बे रखे ना इसीलिए रखे, एक्सचेंज ऑफर ट्रामो होते हैं ना, एक्सचेंज कौन से होते हैं, फाइनेंस एक्सचेंज मनी एक्सचेंज, प्रभु जी काम करते हैं उसमें, तो ये डब्बे वही है, इसमें अपना धन लाके डाल दो जो आपकी जरूरत का नहीं है, डाल दो इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी है, कई लोग पता चला पत्ते डाल गए, बोले हमें जरूरत नहीं है, वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे धन लाकर डालना है। तो वो धन डालने के बाद में आपको कृपा मिलेगी हरि नाम की। और कहते हैं जब आप हरि नाम पूरा जीवन लेंगे तो अंत काल में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम। अंत काल में जो जीवन भर किया वही याद आएगा। जैसे कुछ भक्त एक बार कीर्तन करते करते किसी के घर पहुंचे, जैसे हमें लोग बुलाते हैं, आइए प्रभु जी हमारे घर पे पिताजी का श्राद्ध है, कोई बोलता है आज बच्चे का जन्मदिन है, तो कुछ भक्तों को कीर्तन करने के लिए बुलाया गया। उनके घर में श्राद्ध था उनके पिताजी का, गुजरे हुए एक साल हो गया था, तो सब भक्त पहुंचे तो उन्होंने प्रसाद लगा दिया, कीर्तन समाप्त प्रवचन समाप्त प्रसाद दे रहे हैं, साथ में कोका कोला की बोतल रख दी। तो भक्तों ने कहा कि आप ये कोका कोला का बोतल दे रहे हैं, हम लोग तो कोका कोला पीते नहीं है, कुछ और जूस वगैरह ले आते। तो बोले नहीं नहीं हमारे पिताजी की इच्छा थी। ये कैसी इच्छा थी कि भक्तों को कोका कोला पिलाओ? तो बोले हमारे पिताजी एक्चुअली ना भोला के भक्त थे, भोला मतलब शिव जी के, और उनकी रोज की कार्यक्रम था रिटायर होने के बाद, पास में एक दुकान थी तो उस दुकान में जाकर बैठ जाते थे और वहां पर सारा दिन कोका कोला पीते रहते थे, कोला कोला कोला, और रात को भोला भोला करते रहते थे। अभी क्या हुआ, जब उनका अंत समय आया तो कंठ अवरुद्ध हो गया उनका, कफ पित्त वात ने गला पूरा जकड़ लिया और बच्चे बोलने लगे पिताजी भोला भोला पिताजी भोला बोला कोला कोला। शरीर छूट गया कोला कोला करते हुए। तो बच्चे बोले अब पिताजी की इच्छा है कि जब भी भक्त आए श्राद्ध में उनके श्रद्धा पूर्वक तो कोला वितरण किया जाए, तो हम कोका कोला देते। तो इसलिए अब अंत समय में ऐसा ना हो कि शरीर छूट जाए और हमारे मुंह से कृष्ण ना निकले और कुछ निकले, स्मरण ना आए भगवान का, तो बेटर है आज प्रगाढ़ता से भक्ति को पकड़े। जैसे बताते हैं कि एक राजा थे और उनके एक मंत्री सेक्रेटरी उनके साथ सदा विचरण करते थे, और राजा बहुत ही बड़े अच्छे भक्त, इतने अच्छे भक्त कि देवी देवता उनसे मिलने के लिए आ जाते थे, और देवी देवताओं ने कहा कि आपकी भक्ति इतनी अच्छी है प्रबल है, जिस पल आप अपने शरीर का परित्याग करके वैकुंठ धाम गमन करेंगे सारे देवी देवता फूल की पुष्प वृष्टि करेंगे। अच्छा पुष्प वृष्टि होगी, वाह, और सारे गांव महल राज दरबार सबको मालूम पड़ गया। अब राजा का अंतिम समय आया और राजा जो था उसे क्या किया, उतार कर बेड से नीचे रखा गया और बस अब अंतिम समय आ गया है, और उसने अपना मुख खोला और सब बोल रहे थे बोलो राम सब बोल रहे थे, और ये बोलना तो चाह रहे थे लेकिन वहां एक बेर का पेड़ था, बेर का पेड़, और बेर के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर रसीले बेर लगे थे। तो उस व्यक्ति की, उस भक्त की, उस राजा की आसक्ति उस बेर में हो गई, काश बेर खाके मर जाता काश बेर खाके मर जाता। और फिर क्या हुआ, इतने में शरीर से आत्मा निकल गई, और जब आत्मा निकली तो पुष्प वृष्टि नहीं हुई, तो सारे लोग देखने के लिए राजा की अंतिम यात्रा देखने, पूरा शहर पूरा महल पूरा राज दरबार राज्य सब इकट्ठे हो गए। मंत्री बोला ये तो राजा की बेइज्जती हो गई, हाँ सब लोग कहेंगे झूठ बोला इसने, भक्त था ये था वो था, क्या हो गया? तो उन्होंने देखा इनकी निगाह पेड़ की तरफ है, तो तुरंत पेड़ पे चढ़ा और जिस डायरेक्शन में वो गुच्छा था बेर का, बेर को निकाला और एक एक करके बेर को तोड़ने लगा। तोड़ा तो एक बेर के अंदर देखा एक कीड़ा है, और कीड़ा बेर के अंदर चल रहा है पूरा डांस कर रहा है। तो फिर उस कीड़े को निकाला और उसने कहा मैं अपराध मोल ले लूंगा लेकिन राजा की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। कीड़े को रखा, मार दिया, जैसे ही मारा पुष्प वृष्टि होने लग गई ऊपर से, हरि बोल। क्यों? क्योंकि अंतकाल में उसका स्मरण, उसने भक्ति तो करी थी लेकिन बस बेर की छोटी सी आसक्ति में उसे एक और जीवन लेना पड़ गया। तो ऐसा हो सकता है, हमें भी पता नहीं किन किन चीजों से आसक्ति है, कहां कहां आना पड़ेगा कुछ मालूम नहीं है। आप देखिए हाथी जानवर भी भगवत धाम चले गए, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं आप, गजेंद्र भगवत धाम चले गए, बस अंत काल में क्या बोला, गोविंदा, क्या बोला, और कहां चले गए, भगवत धाम चले गए। ग्रह मगरमच्छ, उसने सिर्फ हाथी का पांव पकड़ा था तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने शिक्षा गुरु का काम किया, इसने क्या किया, इसको भगवत धाम पहुंचाने में मदद करी, वरना ये कभी गोविंदा गोविंदा नहीं चिल्लाता। हाँ तो चाहे इसने पांव पकड़ा लेकिन ये शिक्षा गुरु है, तो उसको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। जटायु को भगवान ने ऐसा स्थान प्रदान किया जो कि राजा दशरथ को भी नहीं मिला, जब अंत काल में भगवान राम वहां पर थे जब जटायु अपने प्राण त्याग रहे थे, लेकिन दशरथ जब प्राण त्याग रहे थे तो भगवान राम वहां पे नहीं थे। तो आप ये देखिए जटायु और अनेकों वानर, इतने सारे बंदर रामचंद्र जी की सेवा कर पाए, तो उन लोगों को भक्ति मिली, उन लोगों को धाम मिला। और हम लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, हमें भक्ति नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए, वो जा सकते हैं धाम, क्या हम नहीं जा सकते? जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हाँ ना, तो इधर वाले चले जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं हमें नहीं जाना, ठीक है। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? ये वाले नहीं जाएंगे, थैंक यू हरे कृष्णा का। आप खुश हैं? ठीक है। जो नहीं जाना चाहते हैं तो रह सकते हैं, जो जाना चाहते हैं उन्हें दोनों हाथ खड़े करके बोलना चाहिए, हरी बोल। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं नहीं नहीं, घर बहुत अच्छा है, हीटर लगा है, गोलोक धाम में है हीटर। नहीं, हम यही रहना चाहते हैं। तो गोलोक धाम जाने के लिए इंसान का शरीर ही सुदुर्लभ शरीर है। वो भाग्यशाली जानवर थे जिनको गलती से श्रापित शरीर मिला जानवरों का, अन्यथा वो बहुत सुंदर भक्त हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र बनकर आते हैं, हुहु नाम के गंधर्व ग्रह बनकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जानवर बन के हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं, सिर्फ दुर्लभ मानुष देही इसके अंदर ही हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति किस तरह करनी है? जिस तरह कर रहे हैं ना, ढीली ढाली, ये नहीं है भक्ति। पता है किस तरह करनी है? रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। वो भक्ति करनी है जिसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा हमारे जीवन की ना हो। अभी जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, मंदिर आते हैं तो प्रभु जी मैंने ना 400 बुक्स कर दी, बताने की जरूरत है, कर दी। अभी चाहता क्या है वो? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। हाँ, प्लीज पैट ऑन माय बैक, मैंने कर दिया प्रभु जी, 400 बुक्स कर दी, मैंने 500 कर दी, मैंने 1000 कर दी। मैं प्रभु जी हर रोज मंगला आरती आता हूँ, नेवर मिस प्रभु जी मंगला आरती। आपने देखा प्रभु जी, आप मिस करते हैं, हम नहीं करते हैं, वेरी गुड, थैंक यू हरे कृष्णा। अन्य अभिलाषिता, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कृष्ण से हम प्रेम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि इस तरह से। देखिए आप, जो वानर थे भगवान राम की सेना में, उन्होंने बिना किसी इच्छा के कितनी सेवा करी। आपसे पूछा जाए, एक वानर का नाम बताइए रामायण से जिन्होंने पत्थर उठाकर राम सेतु बनाया। हाँ हाँ, बस। और कितने थे पता है वानर? जानते हैं कितने वानर थे वहां? बहुत सारे, अभी गिनिए जरा उंगलियों पे। वहां पर बताते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, 100 करोड़ महाओघा वानर वहां पर। कहेंगे ये कौन सी डिजिट बोल दिया प्रभु जी आपने, 100 करोड़ महाओघा वानर थे वहां पर। प्रभु जी इसको वर्णन करें जरा, क्या है ये? तो वर्णन आता है इसका, आप सुनिए जरा ध्यान से कानों को खोलकर। 1,00,000 करोड़, सुना है कभी? 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ को भागवत रामायण वर्णन करती है, उसको बोलते हैं एक शंखु। 1,00,000 शंखु को बोलते हैं एक महाशंखु। 1,00,000 महाशंखु को बोलते हैं एक बृंद। 1,00,000 बृंद को बोलते हैं एक पद्म। 1,00,000 पद्म को बोलते हैं एक महापद्म। 1,00,000 महापद्म को बोलते हैं एक खर्व। 1,00,000 खर्व को बोलते हैं एक महाखर्व। 1,00,000 महाकर्व को बोलते हैं एक समुद्र। 1 समुद्र को बोलते हैं एक ओघा। और 1,00,000 ओघा को बोलते हैं एक महाओघा। हरे भाई, 1,00,000 महाओघा नहीं, 100 करोड़ महायोगा वानर। उसमें से कितनों का नाम याद है? नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, बस। बाकी सब अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। बिना किसी अभिलाषा के भगवान की सेवा करी, हटे नहीं, मर भी गए उसमें से कितने अपने प्राणों की बलि दे दी भगवान राम की प्रसन्नता के लिए। ये है एक्चुअली जीवन। और भगवान राम ने क्या किया? भगवान ऐसे हैं, भगवान कहते हैं, ना इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मेरे लिए अगर छोटे से छोटा भी काम करोगे मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुम भूल जाओगे लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, भगवान कहते हैं। और वही किया भगवान राम ने, जब सीता जी को लेकर रावण का वध करके वापिस जा रहे हैं तो बहुत बड़ा एक विमान है जिसे बोलते हैं क्या, पुष्पक विमान। उस विमान का इस प्रकार का बनाया गया आर्किटेक्चुरल की मानसिक गति से तो वो चलता है, और जितना साइज चाहो उतना बड़ा हो सकता है। अगर एक वानर ये कहे अरे अरे मैं तो टॉयलेट गया था, मैं मिस हो गया, तो भगवान राम ये नहीं कहेंगे सीट फुल सॉरी, वो कहेंगे ठीक है यू कैन कम, तो एक सीट और बन जाएगी, और देखा सीट ज्यादा है और लोग कम है तो सीट अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। और कितने वानरों को लेके जा रहे हैं, 100 करोड़ महाओघा वानरों को बैठा लिया, चलो तुम्हें अयोध्या लेके चलूंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सबको कहां ले जाऊंगा, साकेत धाम अयोध्या धाम ले जा रहे हैं, वैकुंठ धाम भगवान ले जा रहे हैं, किसी को नहीं भूल रहे हैं। और सब वानर बैठ गए, हनुमान जी सीता जी सारे बैठे हैं और चल रहे हैं, और फिर भगवान राम जगह जगह रुक के दिखा रहे हैं, वो देखो यहाँ पे ना हमने सेतु बनाया, यहां से हनुमान जंप करके सीता तुम्हें मिलने गए थे। भगवान हर एक चीज का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान बताएंगे ये द्वारका वाला, हाँ ये भगवत गीता के लिए जंप करके 21 सेक्टर गया, मेट्रो स्टेशन खड़ा हुआ, भगवत गीता पार्टी, फिर वेरी गुड, सीता मैया कहेंगे वाह, रुक्मणी जी कहेंगे वाह बहुत अच्छा भक्त है, तभी तो धाम जाएंगे, ऐसे थोड़ी घर में सोते रहेंगे, आम खाएंगे फिर धाम चले जाएंगे, इट इज नॉट सो आम, ये बहुत खास है भगवत धाम जाना, आम नहीं है खास है। तो जब वहां जाते हैं और जब उतरते हैं वहां पर उनका विमान पुष्पक विमान, तो उनके भाई वेट कर रहे थे उनका, कौन से भाई, भरत। तो भरत के शब्द का अर्थ बताते हैं, भ का मतलब है जो व्यक्ति ज्ञान में हमेशा रत रहता है, भ मतलब भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, और सूर्य का मतलब तेज, और तेज का मतलब ज्ञान, अंधकार का नाश करने वाला सूर्य ज्ञान। तो ज्ञान और वैराग्य में जो रत रहता है वो है भरत हमेशा। और ऐसे भरत ऐसे भाई थे जो जीवन के असली धन भगवान राम को चाहते थे, ना कि अयोध्या की प्रॉपर्टी। अभी तो पता चल जाए भाई गया है 2 साल के लिए विदेश, तो फटाफट प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेंगे, हाँ इस तरह का है। कई लोग तो भाई का मर्डर कर देते हैं इसलिए कि बस धन मुझको चाहिए, जीवन का धन वो नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट केसेस सिविल केसेस में जाए भरे पड़े हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग, ये प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं जाएगी। क्या किया आपने धार्मिक कार्य, भगवान का प्रेम भक्ति, वो आपके साथ जाएगा, वो असली धन। तो ये भरत जो थे इंतजार कर रहे थे कब मेरे राम वापस आएंगे, और अगर 14 साल वनवास के बाद वापस नहीं आए तो आज ही तुरंत मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन तुरंत वहां पर रामचंद्र जी अपनी 100 करोड़ महायोगा वानरों की सेना लेकर उतरते हैं, तो ये नहीं कहते भरत अरे इतनी कांग्रेगेशन डेवलप कर लिया आपने, कहां से लिया इतने भक्त, हमारे पास तो इतना प्रसाद नहीं है। नहीं, सबके लिए अरेंजमेंट किया गया, प्रसाद बनाया गया, सब लोगों को बिठाया गया। जो ये भरत थे, ये थे एक्चुअली चेतन महाप्रभु का जो कहा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले। चेतन महाप्रभु शिष्टाष्टकम के 8वें श्लोक में वर्णन करते हैं क्या, अश्लीषाय पादरातम पिनिष्टुमाम आदर्श नाम नाम्रता करूत्वा यता तथा वा विद्धा तुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सा एव नापरा। भगवान आप मुझे गले लगाएं या फिर धुतकार दें, आप सदा मेरे कौन रहने वाले हैं, प्रेमी भगवान रहने वाले हैं। और हम कैसे हैं, देखो मेरी मुराद पूरी कर दो तो हलवा बांटेंगे, नहीं करोगे तो नहीं बांटेंगे, मेरी मुराद पूरी कर दो तो गीता बांटेंगे, नहीं पूरी करोगे तो नहीं बांटेंगे। प्रभु जी गीता बांटने से मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाएगा क्या, प्रभु जी हरि नाम लेने से घर के झगड़े बंद हो जाएंगे क्या। तो हम भक्ति कर रहे हैं लालच के कारण, और भगवान के जो भाई हैं भरत, उन्होंने भक्ति करी प्रेम के कारण, तो ऐसी भक्ति करी, और उन्होंने सबके लिए प्रसादम ऑर्गेनाइज किया, जैसे हमारे इस्कॉन में भी होता है संडे लफ्फिस के बाद आपको भी मिलेगा, ज्यादा देर नहीं है थोड़ी देर और प्रसाद मिला। तो सारे वानर उन्होंने बेचारे ने कभी अयोध्या में ऐसे कांग्रीगेशन में बैठ के प्रसाद तो खाया नहीं था, तो कैसे प्रसाद खाएं, तो सबको बिठा दिया गया सारे वानरों को। और मेन्यू क्या बना था पता चलते क्या खाने में था उस दिन, तो रामायण वर्णन करती है, शास्त्र वर्णन करते हैं, हमारा अपना मेन्यू नहीं है, चने और छोले बनाए गए थे, चने छोले भटूरे थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन चने छोले थे, तो चने छोले बनाए गए और स्पून चम्मचे भी दी गई, और सारे वानर 100 करोड़ महायोगा वानर बैठे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है प्रेम पूर्वक। और जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो ये सोच रहे कैसे खाएं, अब बंदर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कैसे खाएं कैसे खाएं कैसे खाएं, स्पून तो यूज करना आता नहीं, हाथ हमारे स्पून के लैसे है नहीं। एक काम करते हैं, एक ने कहा मैं बताऊं, हाँ अपनी बुद्धि लगाई और छोले को ऐसे उठा ला, टी ऊपर करके खा लिया, तो सारे बंदे हाँ हाँ बहुत बढ़िया ऐसे ही खाएंगे, और पूरे में कोई पूंछ से उछाल रहा है, कोई इधर से उछाल रहा है, और पूरे में सब आनंद पूर्वक छोले और चने को ग्रहण कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान चलो देख के तो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है। जैसे हमारे अमोघला प्रभु और पीयूष गोयल प्रभु जी निकलते हैं देखने के लिए मंदिर में सेवा कैसी चल रही है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिला कि नहीं मिला, तो भगवान राम और हनुमान भी देखने आए और देखा ये क्या है, सब एक दूसरे के मुंह में टपक छोले फेंक रहे, चने फेंक रहे, हवा में उछाल रहे, खा रहे हैं और आनंद में है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान ने कहा कि ये प्रसाद को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, आनंद पूर्वक, लालच पूर्वक नहीं, आनंद पूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद को प्रसाद मान रहे हैं। हम प्रसाद को प्रसाद नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी हलवा। अगर किसी को एक पूड़ी कम मिल जाए तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, प्रभु जी उन्हें तो चार मिल गए हमें तो एक ही मिली, हलवा हलवा भी था, अरे हमारे टाइम पे तो बाल्टी खत्म हो गई थी, ऐसे। तो ये क्या है, प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद समझेगा उसे तो एक चावल का दाना भी मिलेगा तो मुंह में रखेगा, कहेगा आह ओ कृष्ण हे रुक्मणी द्वारकाधीश कितने कृपालु हो मुझे प्रसाद दे दिया आपने। लेकिन हम आ रहे हैं भोजन के लिए, तो फिर इस दृष्टि को थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर हम सच में भक्ति करना चाहते हैं। फिर सारे वानरों को जिन्होंने प्रसाद खा लिया था, फिर गिफ्ट सेरेमनी हुआ कि आपने बहुत बहुत सेवा करी, और सारे वानरों को स्टेज पे बुलाकर प्राइज दिया जा रहा था। जैसे जो लोग भगवद गीता मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को जनवरी में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने बहुत अच्छा भगवद गीता, थैंक यू हरि बोल वेरी नाइस क्लैप करेंगे। तो ऐसे ही सारे वानर क्लैप करते थे, हरि बोल कहा जाता था और सबको गिफ्ट दिया जाता था। सारे वानर अपना सर्टिफिकेट लेते थे, जय श्री राम कहते थे, नीचे उतर जाते थे। हनुमान जी का नंबर आया तो हनुमान जी को कहा सीता मैया ने, ओ हनुमान चिरंजीवी भव। क्या बोला, चिरंजी, चिरंजीव मतलब समझते, चिरंजी भव नहीं चिरंजीवी भव। क्या बोला, लोगों समझ ही नहीं आया, चिरंजी भव मान रहे हैं, चिरंजीवी भव मतलब आप हमेशा जीवित रहें, आपका ये शरीर नष्ट ना हो, चिरंजीवी भव। तो हनुमान रोने लग गए, बोले मैया आपने कैसा आशीर्वाद दिया, इस शरीर का फायदा ही क्या जो भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया। जीवन तो लंबा कछुए का भी है, हजारों सालों तक जीता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। लोहे की धौकनी जो लोहार के पास है वो भी लंबे समय तक पड़ी रहती है लेकिन भगवान के भजन में नहीं लगती है। मेरा जीवन का फायदा ही क्या, क्योंकि मैं राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जीवन बेकार है। जबकि कितने बड़े राम के भक्त हैं हनुमान, फिर भी वो उनकी स्थिति ऐसी है और हमारी स्थिति ऐसी है। एक साल हुआ नहीं हमारे मंदिर में आए हुए, प्रभु जी दीक्षा वगैरह का सोचो हमारा कुछ बहुत दिन हो गया थे मंदिर में, अब याद है ना नाम मेरा तरुण, प्रभु जी लिख लीजिएगा। तो इस तरह की जो बुद्धि है, भगवान हनुमान को देखो, हनुमान से पूछा गया हनुमान जी सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जा दिन सुमिरन भगवान का स्मरण और भजन ना हो। और हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन प्रसाद पूरा न होई। अरे आधा मिल गया प्रभु जी, अरे आप प्रभु जी आप देखते तो हो नहीं, हाँ आप तो अपने उधर चले जाते मैनेजमेंट पर, यहाँ हमको चावल चावल दिया कड़ी नहीं दी प्रभु जी, पता आपको सूखी सब्जी से हमें चावल खाना पड़ा। कंप्लेन कर रहे हैं प्रभु जी आपको, आप फिर भी हंस रहे हो प्रभु जी, आपको आप हंसते रहते प्रभु जी। What is this? Actually, हम समझ ही नहीं रहे भक्ति क्या है। जा दिन सुमिरन भजन ना होए, जप हुआ प्रभु जी जप तो नहीं हुआ, गप हो गया और प्रसाद हो गया, जप नहीं हुआ, घर जाके रात को दो माला करेंगे प्रभु जी, जप नहीं हुआ सुमिरन भजन नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी विपत्ति मंडरा रही है हर पल हमारे सर के ऊपर, हनुमान जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हनुमान नाराज मत हो, मैं तुमको क्या देती हूं, अपना अनमोल्य हार। इस कथा को आप अनेकों बार सुन चुके हैं, अपना अनमोल हार निकालकर हनुमान जी के हाथ में दे दिया। तो सारे वानर जोर से ताली बजाने लगे, कैसे बजाने लगे, इधर वाले खुश नहीं हुए, कोई बात नहीं हनुमान जी देख लेंगे वो तो। तो फिर बहुत ताली बजाई सबने और हनुमान जी का गिफ्ट दिया गया हार, और हनुमान जी ने हार को देखा और फिर एक एक मोती निकाल के फेंकने लगे। आप सब कथा जानते हैं, फेंका तो फिर फेंकने के बाद सीता मैया नाराज हो गई, बोली हनुमान ये क्या किया तुमने, अनमोल हीरो और मोतियों का ये हार तुमने ऐसे समान रोटी के टुकड़े के समान फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया क्योंकि इसके अंदर मुझे राम का स्मरण नहीं हो रहा, मैं बड़ा परेशान हूं कि मुझे भगवान राम का स्मरण और प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा। तो मैया ने कहा, अच्छा हनुमान तुम ऐसा मानते हो कि जिस चीज में भगवान राम नहीं हो तुम उसको अपने साथ स्वीकार नहीं करोगे, तो क्या तुम्हारे शरीर में भगवान राम है? तो हनुमान जी ने कहा हाँ है। तो सब बहने, अच्छा शरीर में भगवान राम, बोल तो दिया बड़ी बात है, दिखाओ। तो उन्होंने अपने स्टेज पर ही, जैसे स्टेज पर सर्टिफिकेशन सेरेमनी चल रहा था, वहीं पर ही अपने हृदय को विदीर्ण फाड़ करके क्या दिखाया, राम और सीता का दर्शन सभी भक्तों ने किया और सारे वानर जोर से बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे।
तो भगवान ने जब देखा हो तो भगवान स्वयं, मतलब ऐसा दिन हो आप मंगला आरती के लिए आए और वहां से रुक्मणी द्वारकाधीश चलना शुरू कर दें स्लो मोशन में, धीरे धीरे आप भी चल रहे हैं और दोनों गले लग गए। भगवान राम ने हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान तुमने जो आज प्रकट किया है ना, इसके लिए तो मैं युगों युगों तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुमने जो आज भक्ति का प्रकट किया है अपना लक्षण, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा और मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे मैं तुम्हारे इस भक्ति को खरीद सकूं। मेरे पास बस एक ही चीज है क्या तुम्हें देने के लिए, प्रेम भरा आलिंगन। सिर्फ मैं तुम्हें अपना प्रेम भरा आलिंगन दे सकता हूं। और भगवान राम ने हनुमान को गले लगा लिया और ऐसे गले लगाया कि भगवान राम भी रो रहे हैं और साथ में हनुमान भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, रो रहे हैं। आप सोचिए कितनी सुंदर लीला, आपने फोटोग्राफ देखा होगा जहां पर हनुमान और राम दोनों गले लग रहे हैं, हाँ तो वो यही लीला है। और भगवान राम कह रहे हैं मेरे पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं, अब मैं तुम्हें बिक चुका हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान ऋणी बन जाते हैं, अहम भक्ता पराधीन हो, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हनुमान। तो अब हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा कि सीता मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहने का, सदा जीवित रहने का, मैंने मना कर दिया, लेकिन भगवान आपने ये क्या किया, ये क्या किया आपने, आपने मेरे शरीर का आलिंगन कर दिया, अब मैं इस शरीर के नाश के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सदा सदा आपके नामों का स्मरण करते हुए युगों युगों तक विचरण करना पड़ेगा। इसीलिए हनुमान जी का नाम सप्त चिरंजीवियों के अंदर वर्णन किया जाता है, कहते हैं सात चिरंजीवी हैं, उसमें अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य च परशुरामा सप्त इति चिरंजीविनम। सात चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने अन्य अभिलाषिता शून्यम भगवान की सेवा करी है, किसी अभिलाषा या किसी लालच या किसी टारगेट से नहीं करी है। तो इसलिए हमें हरि नाम तो मिल गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ये बीज तो मिला लेकिन इसको कैसे पकड़ना है। तो कहते हैं कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय यही कृष्ण सही नाम एक तत्व है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। लोग भगवान में भगवान के नाम में भेद करते हैं, वो कौन सा दिन आएगा जब रुक्मणी द्वारकाधीश मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे, और ये क्या नकली है, ये झूठे हैं, भगवान का नाम झूठा है, सब एक ही चीज है, बस भरोसे की बात है कितनी श्रद्धा पूर्वक आप उसे अपने जीवन में लेते हैं। कहते हैं एक नाम यार मुखे वैष्णव से है तार ग्रह यत्न करी मानी ब निश्चय। भगवान उसको अपना भक्त मान लेते हैं जिसके मुख पे एक बार नाम आ जाता है, वो वैष्णव कहलाता है, क्योंकि वो भगवान का नाम उसने बोल दिया। ऐसे वर्णन आता है कि एक बार एक घर में कीर्तन प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, जैसे हम भी अर्चित पूजी और मोगला पूजी को बुलाते हैं कीर्तन करने के लिए घरों में, तो कीर्तन करने के लिए बुलाया गया तो एक भक्त के भाई थे, जैसे हमारे पास कंप्लेंट लेके लोग आते हैं, प्रभु जी मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरा भाई नहीं करता, मेरी पत्नी नहीं करती, मेरा बेटा नहीं करता, बेटा अंडा खाना चाहता है, और इस तरह से लोग प्रश्न पूछते हैं आकर के। तो फिर जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको घर पे बोलते हैं हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाइए, तो भक्त ने हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाया, तो उनके भाई थे और उनके भाई बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भक्ति से दूर थे। अब ये सारी पार्टी हरे कृष्णा मंडली पहुंच गई हमारी, और हाँ सारे भक्त उत्साहित रहते हैं, जोर जोर से घुसते भी हरि बोल हरि बोल, सारे लोग परेशान है क्या है भूत सवार है इन लोगों में, हरि बोल करते रहते हैं। तो पहुंच गए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, हरे कृष्णा कीर्तन हुआ, प्रवचन हुआ, प्रसाद में भी हरि बोल हरे कृष्णा, महाप्रसाद में भी हरि बोल होता रहा। अब सारे भक्त बोले प्रभु जी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे भाई ने ना रूम बंद कर लिया था, कहता है मैं ना दर्शन ही नहीं करूंगा, मैंने सुना है ये लोग ऐसे होते हैं दर्शन पवित्र करे ऐ तुम्हार गुण, इनके दर्शन कर लो तो पवित्र हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि मैं सदा सदा नरक में वास करूं, मैं नहीं जाना चाहता इन लोगों के साथ में, मुझे नहीं पसंद ये लोग। तो भक्तों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करो नॉक करो हम चले जाते हैं फिर हम आ जाएंगे वापस। तो सारे भक्तों ने पांव से आवाज करी धीरे धीरे कि हम जा रहे हैं, उसके बाद सब वहीं खड़े हो गए, नॉक किया ठक 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 ठक, उसने कहा क्या है चले गए क्या, हाँ चले गए, उसने जैसे खोला ना सब बोले हरि बोल, खड़े थे कैप्चर हरि बोल पकड़ लिया, वो घबरा गया छुप गया बैठ के अंदर चादर से, नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, अच्छा देखो मत बोल तो हरि बोल हरे कृष्णा, नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलोगे वही नहीं बोलूंगा जो तुम बोल रहे हो बोला नहीं उसने हरे कृष्णा, बोलो एक बार हरे कृष्णा, तो बोला नहीं। तो जो मेन प्रभु जी थे जैसे हमारे हिस्से से मोगला प्रभु, हाँ प्रेम पूर्वक ने बोला बोल दो ना हरि बोल, बोलो ना हरे कृष्णा, तो उसने कहा नहीं बोलूंगा, ये जो मुस्कुराकर बोल रहे ना हरे, इसका तो कभी नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा, कभी नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा, हो गया जी हरि बोल, चल चल हमारा हो गया, वो निकल गए। अब वो जा रहे हैं, अभी क्या हुआ ये बस गुस्से में घर से बाहर निकला, हाँ मेरे भाई ने आज ऐसा किया मेरे साथ, मुझे इन बिना बालों वाले लोगों के दर्शन करा दिए, बाहर निकला गुस्से में जा रहा था, इधर से बस आई टाक एक्सीडेंट मृत्यु, तुरंत मृत्यु हो गई उसकी। और मृत्यु होते ही जीवात्मा को यमदूत उसके कर्मों के कारण भक्तों से द्वेष के कारण लेके गए कहां, कुंभी पाकम नरक में, और ले जाकर कड़ाई में तलती में डाल दिया। अब जैसे तलती कड़ाई में जलती हुई कड़ाई में तले हुए तेल में डाल दिया, और जलती तरल गरम कड़ाई में तेल में जैसे डाला गया तेल ही ठंडा पड़ गया सारा का सारा, और सारे यमदूत बोलने लगे अरे पहली बार ऐसा केस आया हिस्ट्री में, जलती हुई कड़ाई ठंडी पड़ गई, जलती हुई कड़ाई ठंडी पड़ गई, अरे फिर क्या करें, चलो धर्मराज यमराज के पास जाते हैं। तो यमदूत पहुंचे, यमराज यमराज टेंशन वाला केस क्या हुआ, अरे ऐसा एक भी अच्छा काम नहीं किया इसने, सारे गंदे कर्म किए, लेकिन इसने पता नहीं ऐसा क्या किया कि कुंभी पाकम का तेल ठंडा पड़ गया। तो यमराज बोले अच्छा ऐसा क्या किया इसने, मैं चेक करूं चलूं, कुछ किया तो नहीं इसने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता के पास जाते हैं। तो यमराज और यमदूत सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी बोले ऐसा केस, लैपटॉप ऑन किया होगा डेटा चेक किया, ऐसा कोई केस पहले नहीं आया सॉरी, तो मना कर दिया। अभी वो सोचे क्या करे, ब्रह्मा जी के पास भी उत्तर नहीं, तो यमदूत को बोले आप लोग चले जाओ, मैं और ब्रह्मा जी आगे शिव जी के पास चले जाते हैं। तो शिव जी के पास गए, शिव जी से पूछा जिसने पूरा जीवन गलत काम किए हो, जिसने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जो भक्तों से द्वेष करता हो है, लेकिन उसने अंत समय में खाली एक हरे कृष्णा बोल दिया हो और एंड टाइम पे मर गया हो, तो उसका क्या होगा। तो शिव जी बोले अच्छा, तो लैपटॉप तो है नहीं, शिव जी ने फाइलें निकाली होंगी तो कैलाश पर्वत पे, तो फिर फाइलें चेक करी, मेरे पास भी ऐसा कोई प्री हिस्ट्री नहीं है, कोई केस नहीं है, सॉरी इसका जवाब मेरे पास नहीं, विष्णु भगवान के पास। तो बेचारे यमराज जीवात्मा ब्रह्मा जी और शिव जी आप कहां पहुंच गए, विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं ना, तो ये जीवात्मा विष्णु भगवान के पास पहुंच गई और पूछा गया, तो विष्णु भगवान बोले इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, इसका उत्तर कौन दे सकता है, स्वयं कृष्ण दे सकते हैं, जिनका नामों का उच्चारण इसने अंत समय में किया है। जब कृष्ण भगवान के पास वैकुंठ धाम गोलोक धाम में पहुंचे, तो ये जीवात्मा रो रही थी उस समय, कह रहे थे क्या यार आपने सरकारी दफ्तर बना दिया, इधर से उधर उधर से इधर उधर से इधर, अरे यार मैं तो थक गया, आप तो भगवान है आप लोग तो देवता है, मैं तो थक गई ना, पांव में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, तो एक पालकी मंगवाई, शिव जी ने आगे से उठाया, विष्णु जी ने पकड़ा, पीछे से ब्रह्मा जी ने और यमदूत यमराज ने, और चारों ने उस जीवात्मा को बिठा दिया पालकी पे। अभी ठीक है, हाँ आप ठीक है, आप चलो। फिर जा रहे हैं और कृष्ण भगवान के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, बोले हे रुक्मणी द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे यशोदा नंदन, जय हो आपकी। कह रहे क्या हो गया? कह रहे एक जीवात्मा, इसने पूरा जीवन गंदे काम किए, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, अंत काल पर कुछ भक्तों की कृपा से इसने हरे कृष्ण बोल दिया और तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने अंत में एक बार हरे कृष्ण कह दिया हो उसका क्या होगा? हमारे कुंभी पाकम का तेल ठंडा हो गया और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले अभी भी नहीं समझे? बोले जो आदमी अपने जीवन में अंत काल में एक बार भी मेरे नामों का उच्चारण करता है उसको स्वयं यमराज विष्णु भगवान शिवजी और ब्रह्मा जी पालकी में बिठाकर गोलोक धाम छोड़ जाते हैं। हरि बोल। तो ऐसा नहीं है हम भी एक ही बार लें। सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये कथा, कहते हैं प्रभु जी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन जन्म जन्म ऋषि तप कराई अंत राम कहे आवत नाही, पूरा जीवन तपस्या करने पर भी राम अंत में नहीं आते हैं। उसके लिए वो तो कोई कोई केस हो जाता है लेकिन ज्यादातर प्रयास करने से ही फल मिलता है। तो हम लोगों को ध्यान पूर्वक ये प्रयास करते रहना है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। एक भक्त तो अपना ज्वलंत उदाहरण, जीवित उदाहरण प्रदान कर रहे थे। कह रहे थे बॉम्बे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और एक मर्डरर था, मर्डर होते हैं ना, मर्डर करते हैं, अपॉइंटेड किलर, गुजरात में उसने कई मर्डर किए थे और वो बॉम्बे में घूम रहा था और उसको भेजा गया था कि बस लड़ाई झगड़ा करना और लड़ाई झगड़ा करने के बाद गोली मारनी है और बस तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे एक खोखा। वो बड़ा खुश था और वो घूम रहा था। इतने में बुक बांटते हुए भक्त पहुंच गए, भगवद गीता लेंगे करते हुए भक्त जा रहे थे और कुछ भक्त ने क्या किया वहां पर एक वो चला दिया प्रभुपाद जी का टेप और वो भी कन्वेंशनल पुराना वाला, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। और वो किलर हाथ से बंदूक चला रहा है और उसके दिमाग में वो एक बार सुना हुआ, वो जा रहे थे कीर्तन करते हुए प्रभुपाद जी का रिकॉर्डर और बुक्स बांटते हुए और उसके दिमाग पे उस हरि नाम ने ऐसा असर किया। वो कह रहा था खुद, कहता मैं गोली चलाने लगा, लड़ाई झगड़ा हो गया और मैंने ड्रैगन निकाला और मैं ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे मेरे और हरे कृष्णा नहीं चलाया, वापस आ गया। भक्तों के पीछे पीछे गया, बोला वो ग्रंथ दे दो मुझको जो आपके हाथ में है। भगवद गीता लिया, 5 दिन लगातार भगवद गीता के 8 अध्याय पढ़े और 8वें दिन अपने हेड शेव कराया, दाढ़ी शेव कराया और आकर भक्तों से आकर बोलता है कि है ना मैं अब आप लोगों के जैसा बनना चाहता हूं पर मैंने बहुत मर्डर किए मैं क्या करूं। तो भक्तों ने कहा पुलिस को सरेंडर कर दो। तो बेचारा बिल्कुल बात मानकर जप माला लेकर बोला अब मैं जेल में जाऊंगा और जेल में जाकर पुलिस को सरेंडर करके अपना पूरा जीवन गीता पढ़ूंगा और क्या बोलूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बस थोड़ी देर और 5 मिनट लूंगा आपके प्रोजेक्ट, 1-2 स्टोरीज और उसके बाद समाप्त करेंगे। इसमें एक चीज और हमने आज के श्लोका में वर्णन किया, धर्म इष्टम धनम नृणाम। तो धर्म व्यक्ति का धन है और यज्ञो अहम भागवतम, भगवान कहते हैं यज्ञों में अग्नि का यज्ञ नहीं हरिनाम यज्ञ कलयुग के लिए बताया। और दक्षिणाम ज्ञान संदेश है। तो गुरु से हम जाएं पूछने के लिए, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो उनके पास जाएं तो ये पूछने के लिए कि मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूं, इसलिए नहीं कौन सी नौकरी पकड़ूं, नौकरी छूट गई है तो क्या करूं, ये पूछ सकते हैं लेकिन ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। गुरु उसके पास जाएं तो अपने जीवन के कैसे हम कृष्ण भावना भवित हो इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन आता है, कहते हैं दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दो ही कृष्ण दास, दो ही व्रज जन कृष्ण शक्ति र प्रकाश। जो गुरु होते हैं वो कृष्ण की शक्ति का प्रकाश होते हैं। तो ऐसे गुरु से कृष्ण के बारे में पूछना चाहिए, ये नहीं कि मेरी दुकान का आजकल बिजनेस डाउन है प्रभु जी किसी दिन कदम रखिए अपना, बोले फिर क्या करेंगे, बोले फिर बिजनेस ग्रो कर जाएगा हमारा, ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। कहते हैं गुरु के सामान्य जीव ना जानी वे कभू, गुरु को क्या नहीं जानना चाहिए, सामान्य जीव, गुरु के सामान्य जीव ना जानी वे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठ नित्य प्रभु, गुरु जो है वो कृष्ण प्रेष्ठ कृष्ण के प्रिय हैं और नित्य प्रभु हैं, भगवान हैं, भगवान के समान है, हाँ सच में खुद भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन गुरु जो है वो सामान्य जीव भी नहीं है। हनुमान जी जैसे है ना वानर, वैसे ही वानर का मतलब होता है वानर, इंसान भी है या जानवर भी है, तो वानर हनुमान जी हैं भी, जानवर भी हैं और इंसान भी, वानर। वैसे ही जो भक्त होते हैं ना वो भी वानर होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ये वानर है, क्यों, देखने में तो लगते हैं समान, वा मतलब और या नर या कुछ और, तो वा नर, तो इसका मतलब प्रभुपाद जी कौन है, इंसान भी है और आध्यात्मिक पुरुष भी है, तो हम उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग माने तो वो गलती है। तो गुरु के सामान्य जीव ना जानीबा कभू, गुरु को सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, गुरु बहुत शक्तिशाली है, व्यक्ति हैं हमारे जीवन में। आप देखिए एक व्यक्ति बता रहे थे कि मैंने एक बार एक व्यक्ति को रोड क्रॉस करते देखा, और रोड जब क्रॉस कर रहा था तो उसके पास एक बहुत बड़ा पिंजरा था और उस पिंजरे में बहुत सारे पक्षी थे और सारे कबूतर गुडरगु 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 लड़ रहे थे आपस में। तो इसने कहा देखो कैसे चढ़ 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 तड़पा रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो इन्हें कहा अरे भाई रुको, इनको क्यों पकड़ रखा है तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं चाहता हूं ये आपस में लड़ाई करें और लड़ लड़ के मर जाएं। कह रहे ये तुम्हारी प्रसन्नता है? कह रहे हाँ मुझे बड़ा मजा आता है जब कबूतरों की लड़ाई होती है और लड़के वो मर जाते हैं। अच्छा और जो बच गए, कह रहे उनको मैं काट कर डिनर में खा जाऊंगा, भक्षण कर लूंगा उनका। कह रहे कोई तरीका नहीं कि इनको आजाद किया जाए? कह रहे हाँ तरीका है, इनकी जितनी कॉस्ट है उतना धन मुझे दे दो और अपने, मुझे सर्दियों का टाइम है दिसंबर का महीना, अपनी जैकेट अपनी टी शर्ट ये मुझे दान दे दो, मतलब कि अपने कंफर्ट्स मुझे दान दे दो और मुझे धन दे दो तो मैं इन सारे पक्षियों को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, पॉकेट देखी तो 2,000-4,000-5,000 रुपए निकले, तो 5,000 रुपए उसको दे दिए और अपना जैकेट उतारा, स्वेटर उतारा, बनियान उतारा, पूरा कपड़ा उतार कर दे दिया ठंड में, कहा ये ले लो। उसने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति जो था उसको सर्दी के कपड़े मिल गए, पैसे मिल गए, उसने कहा ये लो कबूतर। और उस व्यक्ति ने क्या किया, सब कुछ देने के बाद पिंजरे को खोला और सारे पंछियों को उड़ा दिया। आह कितनी प्रसन्नता का एहसास हुआ। तो ये कथा में जो व्यक्ति है उन्हें आप जानते हैं, जो व्यक्ति पिंजरा लेकर आया वो कौन था, कलयुग। और कलयुग के पास कबूतर पिंजरे में बंद थे, वो कौन है, हम। और कलयुग क्या चाहता है, ये आपस में लड़के मर जाएं और जो बच जाएंगे उनको मृत्यु के रूप में मैं उनका भक्षण कर लूंगा। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको ये पक्षी पसंद नहीं आए लड़ते झगड़ते, और उसने सोचा कि मैं इन पक्षियों को आजाद करूंगा। और उनको आजाद करने के लिए उसने पूछा इसकी क्या कीमत है, उन्होंने कहा कुछ धन देना पड़ेगा। तो उसने अपना धन दिया, उसने कहा तुम्हें अपना कंफर्ट अपना आराम देना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना आराम दिया। कौन है वो, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया अपना पैसा अपना धन अपना परिवार छोड़ करके गए कहां, अमेरिका। ऐसी सर्दी जैसी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी सर्दी में सिर्फ एक जैकेट के साथ हाँ प्रभुपाद जी वहां पहुंच रहे हैं और जाकर वहां प्रचार कर रहे हैं। हाँ किसके लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, किस लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, ताकि हम जो पक्षी कबूतर पिंजरे में बंद है वो क्या हो सके, आजाद हो सके। और हम ऐसे हैं उन ग्रंथों को ना तो पढ़ते हैं ना तो बांटते हैं, सिर्फ हम लड़ते हैं झगड़ते हैं खाते हैं और घर चले जाते हैं। तो कोशिश ये करिए ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने अपने सारे आराम को त्याग दिया उनके लिए हम अपना जीवन त्याग दें। हाँ जैसे एक बार एक प्रभंजन प्रभु हैं, वो वर्णन कर रहे थे लोकनाथ महाराज के साथ पदयात्रा में जाते थे, तो कह रहे थे कि पदयात्रा के समय में क्या होता है कि हम एक एक गांव में जाते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक गांव में भक्त पहुंचे तो कहा बच्चे सिर्फ बातें करना बंद कर दीजिए बाकी बैठ सकते हैं। तो प्रभंजन प्रभु बोल रहे थे हम गए और हमने देखा कि वहां सारे गांव के लोग हैं, तो गांव के लोगों के पास पहुंचे और कहा बुक्स लेंगे, तो जैसे ही देखा ना हरे कृष्णा सब भाग गए। अरे भाग गए, डरते हैं हमारे से। फिर थोड़ा आगे गए, दुकानदार से पूछा ये भगवद गीता लेंगे, हरे कृष्णा भाग गया वो भी दुकान छोड़कर खुली हुई। जिसको रोकते वो आदमी भाग जाता, तो बाद में जबरदस्ती एक को पकड़ लिया, किधर भागता है बे, रुक, बोला हरे कृष्णा वालों से इतना भागते क्यों तुम लोग, पूरा गांव भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कह रहे आप लोग हरे कृष्णा है ना, छोड़ दो मुझे भी जाना है। अरे जा कहाँ रहे हो? कह रहे हमने एक पंडाल लगाया है और उस पंडाल में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है गांव के। हाँ हमारे गांव में 8 साल पहले आपके हरे कृष्णा वाले आए थे और एक व्यक्ति था जो बहुत गंदे काम करता था, मांस भक्षण करता था, शराब पीता था, और उसको आपके लोगों ने भगवदगीता दे दी और उसने उस भगवदगीता को पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते एक दिन उसने डिसीजन लिया कि अब मैं कभी बोलूंगा नहीं, अब मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। और सोच में पड़ गए सब लोग, अच्छा फिर अब कब बोलोगे? कह रहे जब वापस हरे कृष्णा वाले आएंगे। तो बोले अच्छा तो फिर हम आ गए। कह रहे हाँ इसीलिए तो हम जा रहे हैं, उसने पंडाल लगा के तैयार रखा है, कह रहे जब भी आएंगे मैं उसी दिन बोलूंगा, तो हम आज भाग रहे हैं, आप लोग आ गए हो, आज वो बोलेगा, अब क्या बोलेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सारे लोग बैठ गए थे और वो भक्त बता रहे थे, हम भी जाकर बैठ गए वहां पंडाल में और उस व्यक्ति को बुलाया गया। बेचारा ना नॉनवेज खाता ना शराब पीता, बस जो रूखा सूखा खाता ना बोलता, पतला दुबला आके बैठ गया। अब बोला गया बोलो, तो पहला शब्द उसने बोला जय श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल दिया श्रीला प्रभुपाद जी ने। तो ये तब हो सकता है जब हम अपने गुरु पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो एक अंतिम कथा के साथ आज के प्रवचन का विराम देंगे कि गुरु किस प्रकार से श्रद्धा करनी चाहिए और किस प्रकार से लोग श्रद्धा नहीं करते। अधिकतर लोग जानते हैं इस कथा को। एक नगरी थी जिसका नाम था अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, खाजा होता है जो जगन्नाथपुरी में मिलता है, वो टका शेर मिलता था वहां पे, और भाजी सब्जियां भी टका शेर मिलती थी। तो अब ऐसी नगरी में एक गुरु और शिष्य हर जगह प्रवचन कीर्तन करते थे, पहुंच गए और देखा कि यहाँ राजा जो है वो अंधेर नगरी का चौपट राजा है, इसको कुछ मालूम नहीं है, लोग इसको पपलू बना के चले जाते हैं। हाँ तो उन्होंने सोचा हम भी यहीं रुकते हैं, रुके, प्रवचन दिया और गुरु बोले ये जगह ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। तो शिष्य बोला क्यों बात कर रहे हो गुरु जी, ठीक नहीं है, अमेजिंग, यहाँ पर तो किसी को भी पागल बनाकर मेरे बुद्धिमान जैसा कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए ना तो बस इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम, मुझे तो गृहस्थ जीवन में जाना है, ब्रह्मचारी में बहुत जीवन बिता लिया, आप चलो गुरु जी आपने तो त्याग रखा है सब कुछ लेकिन मैं रुकूंगा यहाँ। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं बेटा नहीं रुको, मेरी बात मानो चलो। अब गुरु का आदेश नहीं मान रहा, गुरु को सामान्य जीव मान रहा, मना कर रहा, गुरु जी कह रहे फिर भी नहीं मान रहा, नहीं नहीं जी हम तो जाएंगे रुकेंगे, ठीक है रुक जाओ, लेकिन एक याद करो, अब गुरु तो पिता समान है, बोला अगर कुछ तकलीफ होना तो मुझे सिर्फ स्मरण करना, एक बार बोलना जोर से गुरु जी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो बस वहां से गुरु जी चले गए और वो वहां बिजनेस करने लगा, कुछ ही गांव से खरीद के लाता और उन मूर्खों को बेच देता और खूब पैसे वाला बन गया। एक दिन राजा ने उसको क्या किया, कहा कि ये चीटिंग करता है, चीटर है, इसको पकड़ लो और फांसी पे चढ़ा दो। अरे चीटिंग की सजा फांसी, मैंने मर्डर थोड़ी किया है। अब वो तो अंधेर नगरी थे, चौपट राजा था, चढ़ाओ ये फांसी पे इसको। और बेचारे को फांसी के तख्ते पे लगा दिया गया, गले में फंदा लगा दिया। अब बड़ा परेशान, गुरुजी अब कौन याद आए, गुरुजी, और पहले गुरुजी थे वो शुरू जी, बाय बाय जी, अभी नहीं चाहिए जी गुरुजी। अभी वो गुरु को याद किया और कहा गुरुदेव हे गुरुजी मेरी मदद करो मैं फंस गया। और राजा आने वाला था, बस गद्दी पे बैठने वाला था और कहने वाला था मार दो, और बस हो जाता उसका। और इतने में गुरुजी आए तो बोले क्या हुआ? कह रहे मैं तो बिजनेस करता था, पता नहीं कहां मुझे पकड़ लिया चीटिंग में, और अब मुझे चीटिंग का फल फांसी, और मैंने तो सिर्फ नॉर्मल बिजनेस किया, ये लोग समझ ही नहीं रहे मैं समझा रहा हूं। अरे मैंने पहले कहा था ये कैसी नगरी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यहाँ पे चौपट राजा है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ रहने का, फिर क्या करूं। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं जो कहूं बस वैसा करना। कह रहे हाँ अब तो वैसा करूंगा, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। अब क्या कर रहा, बोले मैं कहूंगा मैं फांसी पे चढ़ूंगा, तुम कहना तुम फांसी पे चढ़ जाओ। तो राजा आकर बैठा, ढांग ढांग ढांग, राजा साहब आ रहे हैं, राजा के बैठ गया। तो बोले कहाँ है वो? बोले वो रहा। भाई दोनों लोग लड़ क्यों रहे हैं? कह रहे एक कहता है मैं गुरु हूं, एक कहता है मैं शिष्य हूं, कहता है मैं मरूंगा, वो कहता है मैं मरूंगा, कहता है मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अच्छा दोनों को बुलाओ, क्या हुआ? एक कहते हो मैं मरूंगा, दूसरा कहता है मैं मरूंगा, ऐसा क्या कारण है? तो गुरु बोला मैंने अपने 40 साल में ज्ञान अर्जित किया है, आज का जो दिन है और जो ये मुहूर्त है इतना शुभ मुहूर्त है, इसमें जो मरेगा वो सीधा गोलोक धाम जाएगा, चाहे उसने भक्ति करी हो ना करी हो। राजा बोला अच्छा फिर मेरे को चढ़ा दो।
राजा चढ़ गया उसके ऊपर और गुरु बोला ये करते रहेंगे अब तुम यहां से निकलो हरी बोल। तो आगे रहेगा तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार लेफ्टिनेंट मूजे मिले थे। हमारे पास बहुत कथाएं नहीं है, पिछली बार जैसे प्रभु जी बोल रहे थे हमारे बहुत कथाएं, हमारे पास नहीं है, अंतिम बात बता रहा हूं बस एक बात है कथा नहीं है। लेफ्टिनेंट मूजे मिले थे श्रील प्रभुपाद जी से शिकागो में, उन्होंने पूछा कि कैसे करकर क्राइम को कंट्रोल किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा बस एक काम करो, नहीं चाहते हो माया के चाटे तो रोज भगवत गीता बांटे। नहीं चाहते हैं माया के चांटे तो रोज भगवत गीता बांटे, बस भगवत गीता बांटो और प्रसाद बांटो, फिर क्या होगा क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने सीक्वेंस भी बताया, उन्होंने कहा हम कहते हैं चैन चैन चैन, पब्लिक कहती है सी से कान कान कान, फिर हम कहते हैं इफ यू कांट चैन देन आपका करेक्टर विल बी लॉस्ट, वो भी सी से करेक्टर विल बी लॉस्ट, देन यू बिकम चीटर, दैट्स आल्सो सी से, वो भी सी से, अगर आप चीटर बन गए तो फिर आप क्या करेंगे क्राइम करेंगे, वो भी सी से, और क्राइम करेंगे तो संसार में क्राइसिस हो जाएगी, वो भी सी से। तो इसलिए चाहते नहीं है कि चौपट हो जाए हमारी भी नगरी, इसके लिए सबसे पहला सी जो है वो क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौड़ताय की जय, पदेत पावन श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रसाद मुकुल प्रभु की।